मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 4 सितंबर 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग सुनने की परतों की तलाश कर रहे हैं और इस तलाश में हमने 3 परतों को अच्छे तरीके से बहुत ही विस्तार के साथ समझने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि इसकी जो पहली परत थी वह म्यूजिक से संबंधित थी, जो दूसरी परत थी वह साहित्य से संबंधित थी, तीसरी परत के अंतर्गत हम लोगों ने इमेज फॉर्मिंग की बातें की थी जिसमें एक्टिंग भी आती है, और आज हम चौथे परत तक पहुंचेंगे। और यह जो चौथी परत है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पूरी तरह से आपकी अपनी परत है। हालांकि देखिए, जब मैंने इमेजेस के बारे में कल बातें की थी तब मैंने एक तथ्य आपको बताया था कि जो इमेजेस फॉर्मिंग होती है, नो डाउट कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो अपनी तरफ से हमें कुछ इमेजेस स्क्रीन पर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गीत हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई भी बनी बनाई इमेजेस नहीं होती। तो क्या हम वे जब गीत सुनते हैं तो बिना इमेज के समझ लेते हैं? ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो उससे थोड़ा सा हटकर है, हालांकि बीच बीच में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसे भी हैं। दोस्तों, होता यह है कि जो हमारी, सच पूछिए तो जो दुनिया है, यह दुनिया यादों की दुनिया है और साथ ही साथ ख्वाबों की भी दुनिया है। यादों की दुनिया जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि आज आप अपने बारे में जब सोचते हैं तो आप देखिए कि शून्य में नहीं सोचते हैं, या जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है हम केवल उसी तक सीमित रहकर के नहीं सोचते हैं कि जो हमारे आमने सामने है बस वही हमारी दुनिया है। उसमें हमारी यादें शामिल होती हैं, यानी कि अब तक का जो हम जीवन जीते आए हैं वे भी हमारे वर्तमान के जीवन में शामिल हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं यादों की दुनिया। लेकिन क्या हम यादों तक ही सीमित रह जाते हैं? नहीं, उसमें फिर जुड़ जाती है ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया का अर्थ है कल्पना जगत। हम न केवल अतीत के बारे में ही सोचते हैं, हम न केवल वर्तमान तक ही सीमित रहते हैं बल्कि भविष्य के बारे में भी सोच रहे होते हैं। और जब हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं तो सच पूछिए तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। देखिए, अतीत की तो हमारी सीमा है, जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, भोगा है, हम केवल उसे ही याद कर सकते हैं, तो उसकी एक सीमा है। लेकिन भविष्य की तो कोई भी सीमा नहीं है। कल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे उटपटांग कल्पनाएं कर सकते हैं जिनका यथार्थ में परिवर्तित होना असंभव सा है, जो सच्चाई में कभी तब्दील ही नहीं होंगी, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं। वो असीमित दुनिया है। तो ये तीनों मिलकर हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, हमारी यादें, हमारा वर्तमान जिसको आप वर्तमान का अनुभव कह सकते हैं, और फिर हमारी कल्पनाएं। अब आप देखिए कि इसका गीत से क्या संबंध है। दोस्तों, इसका गीत से संबंध है जिस गीत को लेकर के हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अगर तुम साथ हो, यानी कि अगर तुम साथ दो तो मैं यह 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 करूंगी, और फिर वो कहता है कि नहीं, साथ हो या ना हो से क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस गीत में दो चरित्र हैं, दो पात्र हैं, दो लोग हैं, और दोनों का जो संबंध है वह प्रेम का संबंध है, रागात्मक संबंध है। ठीक है, उन दोनों के बीच में किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ तनाव आ गया है। क्योंकि ये फिल्म का गीत है तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ भी सकते हैं। अब देखिए, जो फिल्म है, फिल्म के अपने करेक्टर हैं, वो अपने ढंग से अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो खुद के संदर्भ में है। कि जब हम कहते हैं कि अगर तुम साथ हो तो क्या ये तुम की कोई सच्चाई है? ये जो तुम शब्द है, क्या इस तुम के साथ कोई सच जुड़ा हुआ है? और यह जो तुम का सच है, ये दोनों में से कोई भी सच हो सकता है। वो अतीत का सच हो सकता है और वह भविष्य का भी सच हो सकता है। और जब मैं भविष्य के सच की बात कर रहा हूं तो यहां मैं स्पेशली अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि वह ऐसा ही सच होगा जिसके सच में परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि वह सच एक ऐसा सच हो जिसके कभी भी यथार्थ में तब्दील होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो यथार्थ में तब्दील हो ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि तुम की जगह मैं एक मेल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं कि आप एक पुरुष हैं और तुम की जगह आप कोई कल्पना करते हैं, अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हैं। वो प्रेमिका कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो एग्जिस्ट ही न करती हो लेकिन आपकी कल्पना में है। तो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या यूं कह लीजिए कि एग्जिस्ट करती भी है तो आपको मालूम है कि वह आपके साथ नहीं आ सकती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कल्पना में है। तो जब आप इस तुम की जगह उस अपने काल्पनिक करेक्टर को लेकर के आते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो अतीत में कोई चरित्र था उसे लेकर के आते हैं, तब फिर आप पाएंगे कि इस गीत का जो भाव बोध है वह बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। अब यह गीत किसी राइटर के द्वारा लिखा गया गीत नहीं बना है, यह गीत स्क्रीन पर किसी करेक्टर के द्वारा प्ले किया गया गीत नहीं है, बल्कि यह आपका अपना गीत बन गया है। और दोस्तों, हमारे जो महान नाटक के ऊपर पुस्तक लिखने वाले जो ऋषि हैं, मैं ऋषि ही कहना चाहूंगा, भरत मुनि जिनका नाम है, उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है, इसी को आधार बनाकर उन्होंने साधारणीकरण की थ्योरी दी थी। साधारणीकरण का मतलब है कि जब हम नाटक मंच पर जब हम किसी चरित्र को देख रहे होते हैं तो पहले तो हमें चरित्र से मालूम पड़ते रहते हैं, और लेकिन धीरे 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 वो जो चरित्र हैं वो गायब होने लगते हैं और उन चरित्रों के स्थान पर हम खुद को रखते हैं, यानी कि हम स्वयं के द्वारा उन करेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं। और इसे ही उन्होंने कहा कि साधारणीकरण, यानी कि चरित्र जिनका कि अपना एक पर्टिकुलर नाम था वो नाम गायब हो जाता है और वह चरित्र प्रत्येक दर्शक में समा जाता है। और इसीलिए भरत मुनि ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने दर्शक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा था सहृदय। जो नाटक देखने जा रहे हैं उनको उन्होंने कहा था सहृदय। ये सहृदय किसके साथ का हृदय है? जिसने नाटक लिखा है, जब हम उसके हृदय से जुड़ जाते हैं और मंच पर जो लोग अभिनय कर रहे हैं जब उनके हृदय से जुड़ जाते हैं, या कह लीजिए कि जब उनका हृदय हमारा हृदय बन जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो जो चरित्र है उनका साधारणीकरण हो जाता है, यानी कि वो सबके बन जाते हैं। और जिस भी फिल्म में, जिस भी कहानी उपन्यास में, जिस भी गीत में इसकी जितनी ज्यादा क्षमता होती है वह उतना ही पॉपुलर होता है और उतना ही कालजयी भी होता है। कालजयी कहने का मतलब है कि फिर ऐसे गीत और ऐसी कहानियां कभी पुरानी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये जो चौथी परत है, इस चौथी परत में आप अपने को डालिए, अपने जीवन के यथार्थ को शामिल कीजिए, अपने जीवन की कल्पनाओं को शामिल कीजिए, और ये सब करने के बाद फिर आप उस गीत को सुनिए तो आप पाएंगे कि अरे यह गीत तो मेरा गीत है। और सोच करके देखिए कि जब आपको किसी भी चीज के बारे में यह ज्ञान हो जाए कि यह मेरा है तो उसके प्रति तो फिर लगाव बढ़ ही जाता है, यही इस गीत के साथ भी होगा। तो दोस्तों, इस अंतिम परत के लिए अब आप यह भी एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें और इस तरीके से एक गीत के आधार पर जो हम सुनने की कला, सुनने के विज्ञान और सुनने की परतों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, सच पूछिए तो वह पूरा भी होता है। आपके पास दो दिन का वक्त है, बेहतर होगा कि एक बार फिर से इस गीत का आनंद लेने की कोशिश करें। और अपने अंदर अगर आप कुछ ऐसा परिवर्तन पाते हैं तो अगर आप मुझे सूचित करेंगे तो मुझे और अधिक खुशी होगी। तो दोस्तों, अब दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।